मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने एक रोग के बारे में आप सबसे चर्चा की थी, डिमेंशिया रोग के बारे में, और मुझे लगता है कि सुनने के बाद आप भी थोड़े से इसके प्रति गंभीर हुए होंगे और इस कोशिश में लग गए होंगे कि नहीं नहीं, इस रोग को तो अपने अंदर आने नहीं देना है। और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या सच में हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार इतने कमजोर होते जाते हैं कि जो बाहरी रोग हैं उन्हें अपना घर बनाने का अवसर मिल जाता है? क्या यह जरूरी है? सामान्य तौर पर आप जब भी किसी से बात करेंगे तो लोग यही कहते हुए सुने जाते हैं कि नहीं नहीं, देखिए बुढ़ापा तो अपने आप में ही एक बीमारी होती है। जबकि सच पूछे तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूं और बहुत ज्यादा मिला हूं, और ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनमें बुढ़ापे के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। न तो उनकी कमर झुकी हुई होती है, न उनके मस्तिष्क में कोई असंतुलन दिखाई देता है, न उनकी सक्रियता में जरा सी भी कमी आती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो 55-60 साल के नौजवान हों। तो फिर इन्हें बुढ़ापा एक बीमारी के रूप में क्यों नहीं परेशान कर रहा है? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यह सचमुच में सब कुछ अपने हाथ में है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सचमुच में यह अपने हाथ में है। अपने हाथ में कैसे है, इसके लिए मैं दो बिंदुओं पर आज बात करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि हम सबका यह धर्म बनता है, मैं कर्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, कि हम सब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फिर चाहे हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि आप यंग है तो अभी से स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, और यदि बुढ़ापा आने वाला है ध्यान देंगे तो बुढ़ापा दबोचेगा नहीं, और यदि बुढ़ापा आ ही गया है तो ध्यान देंगे तो वह बुढ़ापा परेशान करने वाला नहीं बनेगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं खुद तो असहाय हो ही जाते हैं, जीने की इच्छा कम होने लगती है, यहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाली पीढ़ी पर भी कहीं ना कहीं बोझ बनकर उनके साथ अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि वे हमारी देखभाल में लग जाएंगे, और एक ऐसे समय में देखभाल में लग जाएंगे जबकि उनके कैरियर का समय है, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वे हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, उससे हमारी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो हम बीमार हैं, ऊपर से उपेक्षा के दर्द और दंश को बर्दाश्त कर रहे हैं तो तकलीफ बढ़ जाएगी, तो ऐसा होने ही क्यों दें। तो दोस्तों, जो पहला बिंदु है मेरे आज की बात का वो है कि हम सबको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, इसे एक प्राकृतिक धर्म समझकर। और स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे दें, इसके लिए तीन बातें अगर हम अपने ख्याल में रखें और अपने आचरण में ले आएं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाहरी बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। पहला, नो डाउट, भोजन। हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं? भोजन का मतलब केवल पेट भर भोजन से नहीं है, बल्कि भोजन की क्वालिटी से भी है। और जब मैं भोजन की क्वालिटी की बात कह रहा हूं तो उसमें महंगे और सस्ते का सवाल नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं उस तरह का भोजन, कि बकायदे हम दाल भी ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, हरी सब्जियां भी ले रहे हैं, इस तरह की चीजें, ताकि हमारे शरीर को भरपूर पौष्टिक तत्व मिल सके। फ्रेंड्स, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो दूसरा पॉइंट है वो है सक्रियता। हमें एक्टिव तो रहना ही चाहिए। खासकर हमारी भारतीय परंपरा में कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं कि अगर बेटा कमाने वाला हो गया है तो अब पिता के आराम करने के दिन आ गए हैं, अगर घर में बहू आ गई है तो अब सास के आराम करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है कि यह कहावत हो सकता है कि परंपरा के तौर पर पारिवारिक दृष्टि से बेहतर हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से तो बेहतर नहीं है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण ने कहा है कि शरीर का धर्म ही है कर्म करना, और यदि हम कर्म नहीं करेंगे और यदि यह शरीर अपना कर्म नहीं करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। आराम करना इसका मतलब है कि शरीर को उसके धर्म से विमुख करना है। तो दोस्तों, सक्रिय रहना ही चाहिए, चाहे हम कोई काम कर रहे हों, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम खेत पर काम कर रहे हों, चाहे हम गार्डनिंग कर रहे हों, चाहे हम खेल रहे हों, जो भी है, फिजिकल एक्टिविटीज इज मस्ट, हमें करनी ही चाहिए। और कुछ नहीं तो एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, घूम सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करने से तो कोई नहीं रोक सकता, इवनिंग वॉक करने से तो कोई नहीं रोक सकता। और जो तीसरा है पॉइंट दोस्तों, वो है विचार। विचारों के स्तर पर हमें अपने दिमाग से जटिलताओं को खत्म करना चाहिए, नकारात्मकता को खत्म करना चाहिए, शिकायतों को जीरो कर देना चाहिए, कृतज्ञता का भाव लेकर आना चाहिए, सबके प्रति उदार दृष्टि विकसित करनी चाहिए। ये जो परेशानी करने वाली फालतू की जो बातें होती हैं, क्रोध है, चिंता है, आशंकाएं हैं, ये व्यर्थ की चीजें हैं। कभी इन पर आप विचार करके देखिएगा तो लगेगा कि नहीं, इनका तो सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनसे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के तीन मुख्य आधार में पहला है भोजन, दूसरा है सक्रियता और तीसरा है विचार। और अंत में एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, इसे आप दूसरा बिंदु कह सकते हैं, कि हमारी आज की जो पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, वो काफी पढ़ी लिखी है। हम लोगों की पीढ़ियां उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस नई पीढ़ी का ये धर्म बनता है कि वो अपनी पुरानी पीढ़ी को, यानी कि अपने पेरेंट्स को या जो भी ओल्ड पर्सन है, उनको वैज्ञानिक दृष्टि से जीने में मदद करें, उन्हें बताएं कि भोजन में उन्हें क्या क्या लेना चाहिए, और यदि भोजन में वो तत्व तो नहीं मिल रहे हैं तो उससे संबंधित आजकल बहुत सी दवाइयां आ गई हैं जो खासकर पौष्टिक तत्व तो उपलब्ध कराती हैं, विटामिन सी की गोलियां हैं और भी जो दूसरी इस तरह की चीजें हैं, वे लाकर उन्हें दे सकते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रह सके। वो पेरेंट्स के भी हित में है और सच पूछिए तो यंग जनरेशन के भी हित में है। दोस्तों, करके देखिए, अच्छा लगेगा, सच में खुद को भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, और इससे बेहतर बात भला और क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, अब दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब और नए विषयों पर बात करेंगे। अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।